सत्संगत जी, प्रेम से कहना, प्रेमा ने बोला, सत्संगत ऐसे भव्य रूप का जिक्र शब्दों में करना मुमकिन नहीं है। जैसे गूंगे के लिए गुड़ होता है, वो गुड़ का स्वाद तो चखता है लेकिन शब्द उस स्वाद का बयान नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो यहाँ पर ये भव्य सुंदर रूप बना है इस समागम के अवसर पर, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वो पूर्ण रूप में इसका आनंद ले रहे हैं। और इसका आनंद लेने के बाद जब यहाँ से रुखसत होते हैं और जहाँ किसी के साथ भी जिक्र करते हैं, तो अंदर से महसूसियत होती है कि हम जिक्र तो कर रहे हैं, पूरा बयान दे रहे हैं, लेकिन जो फील फैक्टर है वो हम किस तरह से इनको प्रदान कर पाए। क्योंकि जो खुद उपस्थित होकर ऐसे आनंदमय वातावरण को जन्म देना और इसी वातावरण में फिर ये घड़ियां पल छिन बितानी, जिसको हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कहते हैं, उसको महसूस कर रहे हैं आप सभी इन मैदानों में उपस्थित होकर, महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न स्थानों से आकर और हिंदुस्तान भर से और विश्व के अनेकों मुल्कों से। तो यहाँ पर पहुँचकर जहाँ पर सभी आनंद प्राप्त कर रहे हैं, आनंद बिखेर रहे हैं, वहाँ पर एक उत्तम संदेश पैगाम वो भी दिया जा रहा है हर इंसान के लिए, जिसका महत्व है। यह अलग बात है कि इंसान इसके महत्व को जानता नहीं है, इसलिए उसके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है, उसके लिए फिर इसकी कोई विशेषता नहीं है। जो एक ऐसी प्रवृत्ति वाले होते हैं जो कि विष्ठा के ऊपर ही रहना पसंद करते हैं, उनको मिठास का स्वाद क्या पता चले, क्योंकि उनको विष्ठा ही प्रिय होती है, उनको हमेशा ही गिरावट ही प्रिय होती है। एक जो मिठास का आनंद लेते हैं वो वही होते हैं जो इसकी महत्ता को जानते हैं। जिस प्रकार से महापुरुषों ने कहा है कि जो भी एक इंसान ऐसा होता है जिसको भक्त पसंद नहीं है ना भक्ति पसंद है, पापी भगत ना भावे, हरि पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जह भी गंध तह जाए, कि एक जो पाप प्रवृत्ति वाले होते हैं तो कहते हैं उनको भक्त और भक्ति अच्छी नहीं लगती है। पापी भगत ना भावे, हरि पूजा ना सुहाए, हरि की महिमा नहीं सुहाती है उनको, हरि का नाम सुनने को तैयार नहीं। जैसे हिरण्यकश्यप जो था भक्त प्रहलाद का पिता, तो उसको भी पसंद नहीं था, वो भी हरि का नाम सुनने को तैयार नहीं था। भक्त प्रहलाद कह रहा है कि जल भी राम थल भी राम, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसे अपने कानों को पूरी तरह से इस कदर बंद करना चाहता है कि हरि का नाम भी सुनने को ना मिले। तो पापी भगत ना भावे, हरि पूजा ना सुहाए, हरि की पूजा अर्चना उसको सुहाती नहीं है, क्योंकि वो विष्ठा के ऊपर रहना पसंद करते हैं। एक भंवरा और एक भूंड, भंवरा कोमल फूलों की पंखुड़ियों के ऊपर जा बैठता है, और भ्रूण जो है वो गंदगी में जाता है। इस प्रकार से वो क्या जाने ये मिठास होती क्या है। जिस तरह से वो भी दास ने जिक्र किया कि जब एक स्कूल में टीचर ने पूछा कि डू यू नो अबाउट द फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर ऑफ ए रोज, सो ऑल द हैंड्स वर रेज्ड, यस वी नो द फ्रेग्रेंस ऑफ द रोज। And then the teacher said, okay, explain it, define it or express it into words. And there was silence. Although they knew about the fragrance of the rose, what it is like, but putting into words, it was very difficult. तो इस तरह से जो इसका स्वाद लेते हैं वही उनको ही मालूम होता है। इसीलिए कबीर जी ने भी यही कहा है कि कहे कबीर मेरी संसा नासी सर्व निरंजन डीठा, के गुर गुड़ दीना मीठा, के गुरु ने वो गुड़ ही मुझे दे दिया है जो मिठास से भरा हुआ है। कहे कबीर मेरी संसा नासी सर्व निरंजन डीठा, कि ये सर्व निरंजन इसको मैं अब देख पा रहा हूँ, इसके दर्शन कर पा रहा हूँ। क्या कबीर जी के लिए तब ये मालिक निराकार नहीं था? जब वो ये कह रहे हैं कि सर्व निरंजन डीठा, डीठा कहते हैं देखने को, जैसे महापुरुष गुरु साहबानों के वचन भी हम पढ़ते हैं कि सुन वड्डा आखे सब कोए, केवट वड्डा डीठा होए। तो डीठा शब्द का मतलब है कि देखना। अब अगर कबीर जी ये बयान दे रहे हैं कि सर्व निरंजन डीठा, उसका मतलब यही है कि गुरु ने ज्ञान रूपी चक्षु दे दिए हैं, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में देते हैं और वो दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो जाता है। तो यही गुरु गुड़ दीना मीठा, कि गुरु ने वो गुड़ दे दिया है। गुड़ के शब्द और शब्दों के मायने नहीं बताए हैं कि गुड़ को इस नाम से भी बुलाया जाता है, गुड़ को इस नाम से भी पुकारा जाता है। वो गुड़ ही मुख में डाल दिया कि शब्द तो छोटे रह जाएंगे, मैं गुड़ ही तेरे मुख में डाल देता हूं। इसी तरह से एक ब्रह्म ज्ञानी भी कहते हैं कि मैं प्रभु से तेरा नाता ही जोड़ देता हूं, ये तुझे इस सत्य का बोध ही करा देता हूं। मायने के वो गुड़ ही मुख में डाल दिया कि जिस प्रभु परमात्मा के नाम लिए जा रहे हैं, जिसके नाम के उच्चारण किए जा रहे हैं, जिसका रटन किया जा रहा है, लेकिन बोध नहीं, तो यहां पर ब्रह्म ज्ञानी ये बोध कराते हैं। और हमेशा ही ब्रह्म ज्ञानी ये बोध कराते आए हैं, इंसान को ये जागृति देते आए हैं, इस सच्चाई से वाकिफ कराते आए हैं। ये परमात्मा जो सबसे करीब है, जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, कि जितना करीब खुदा है उससे करीब कुछ भी नहीं हो सकता है। शहरग से भी नज़दीक है, शहरग थी रब वसदा नेड़े, लोका पाए लंबे चेड़े, कि ये शहर रग से भी नज़दीक है जितना करीब खुदा है। जैसे कहा भी है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, जंगलों में, वीरानों में, पर्वतों में, गुफाओं में, विशेष एक दिशा में, मैं सीमित नहीं हूँ। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे करीब हूं, इससे अति करीब कुछ हो भी नहीं सकता। तो इस तरह से ये नजदीक होने के बावजूद, इसका बोध ना होने के कारण हम इसके नामों तक सीमित रह जाते हैं, उसके साथ जानकारी नहीं जुड़ती है। जैसे भाषा होती है, अब भाषा होती है उसकी अपनी एक एक अल्फाबेट्स होते हैं, उसकी अपनी एक बनावट होती है। अब वो अक्षर तो हमारी आंखें देखते हैं, अब यहाँ मुंबई में जिस तरफ जा रहे हैं कहीं इंग्लिश के साइन बोर्ड्स नज़र आ जाएंगे, कहीं पर हिंदी में भी लिखा नज़र आ जाएगा जिन भाषाओं से हमारी वाकफियत है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया से चल कर आए मराठी से वाकफियत नहीं है, वो मराठी अक्षर तो देख रहे हैं लेकिन समझ तो नहीं आ रही है कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसके साथ वो मराठी भाषा का बोध नहीं जुड़ा हुआ है, वो ज्ञान वो नॉलेज नहीं जुड़ी हुई है। ठीक इसी तरह से तेलुगु में लिखे हुए अक्षर तमिल में, मलयालम में, जापानीज में, मैंड्रिन में, पंजाबी में, गुजराती में, अब वो कोई भी उन अक्षरों को पढ़ देख सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि पढ़ने के लिए उस भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। अब इसका मतलब कि आंखों ने देख भी लिया, अक्षरों को देख लिया, लेकिन बोध नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से परमात्मा के नाम से तो वाकफियत है हमारी। एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, उसको वाकफियत है कि अल्लाह है, और दूसरी तरफ ये राम है, तीसरी तरफ ये गॉड है, चौथी तरफ ये अकाल पुरख है। अनेकों अनेकों नाम हैं इस परम अस्तित्व के, लेकिन ये कैसा है, किस तरह से इसकी सर्वव्यापकता है, किस तरह से ये कण कण में और घट घट में है, ये बोध नहीं जुड़ा होता है। इसीलिए भक्तजन, महापुरुष संत जन एक यही पैगाम देते हैं कि इसका बोध हासिल कर लो। ये खुदा तुमसे दूर नहीं है, देव आहे तुम्हा पुढ़े। पुढ़े किसे कहते हैं कि तुम्हारे समक्ष है, सामने है, ये देव तुम्हारे सामने है, ये परमात्मा ईश्वर ये तुम्हारे समक्ष है, कहीं से लाना नहीं पड़ता है, इसकी मौजूदगी है, केवल एक बोध होना जरूरी है। तो इस तरह से यहां पर ब्रह्म ज्ञान का भी जिक्र परसों से हो रहा है, और लगातार धर्म ग्रंथों में, वेदों शास्त्रों में इस ब्रह्म ज्ञान का जिक्र होता आ रहा है कि यही परिपूर्ण परमात्मा, ये परम अस्तित्व, ये निराकार अकाल पुरख, इसी का हमने बोध हासिल करना है, जिसके कारण हमारी जन्मों जन्मों की भटकन समाप्त होगी। जन्मों जन्मों का बोझ जो ये आत्मा लिए फिर रही है अज्ञानता का, इससे निजात पाने का ये अमोलक समय है, ये वक्त है सुनहरी। इस समय का लाभ उठाना है, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है, जान लेना है इस परमात्मा ईश्वर को, इस अकाल पुरख को, जिसका साम्राज्य कण कण में है, तमाम यूनिवर्स में है, और सारी यूनिवर्स का कर्ता भी यही है, जिसके कारण ये एग्जिस्टेंस में सारी कायनात आई है, यही है वो परम अस्तित्व है। अनेकों जो लोग कहते हैं कि ये तो अपने आप ही अस्तित्व में आ गई, कहां पर कोई इसकी रचना करने वाला है, ये तो अपने आप ही रचना इसकी हो गई। तो वो भी दास ने कई दफा मिसाल दी कि एक पिता भी ऐसा मानता था, हमेशा बेटा जो कि प्रभु की तरफ भक्ति के भाव रखता था, प्रभु के अस्तित्व में यकीन रखता था, ही वॉज ए बिलीवर इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट हिज फादर वॉज एन एथिस्ट, ही डिडंट बिलीव एट ऑल दैट देर इज एनी पावर विच क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, एंड ही ऑलवेज स्नब्ड हिज सन that you are mad if you are believing in the existence of God. So day in and day out the son was listening to what father was saying, but he couldn't argue with his father. One fine day father went out of the house for some time, and when he returned what he sees is a canvas and painted a face, and when the father saw that face, immediately he realized that it is his face which is painted on that canvas. And father says, asks the son, who made it? And the son says, nobody made it. Come on, who made it? And the son says, well, when you went away, strong wind blew, the windows were open, and in flew the brushes and the paint, in flew the canvas, and because of those strong winds and this, your face was painted on this canvas. And then the father was so angry. You think I am mad? You are my son. I have so much experience. I have seen the world. I have seen the life. And you trying to make me fool. Out of me you are trying to make. And then the son says, well, father, if this small painting couldn't be made by itself, and day in and day out you are saying this whole universe was created by itself, it is God which has created. Our mind gets baffled if we see one single, our own self, this mortal being, the system God has created of our physical form, this body, and for that matter so many species, millions of them in the water, or ones, those who are walking on the ground or just crawling on the ground, or the birds which are flying, the insects, etc., the plants, the planets. So it's all mind baffling. So saints say that when we realize this God Almighty, only then we get fully aware that yes, this is the God Almighty which is all-pervading, omniscient, imperishable, which always existed. The age of planets, the scientists do mention, the astrologers do mention, but God is eternal. There was no beginning of God and there is no end of God. तो ऐसे परमात्मा ईश्वर निराकार, ऐसे अकाल पुरख को जानना, इसका बोध हासिल करना है। यही महापुरुष संत जन ये पैगाम और ये संदेश दे रहे हैं। और अगर जो मुनकिर होते हैं इसके अस्तित्व में, तो जैसे एक इंसान जो नास्तिक था, अब वो था तो नास्तिक, लेकिन इंटेंशनली तो नहीं, अनइंटेंशनली ही कह दें कि वो क्या कहता है कि थैंक गॉड आई एम एन एथिस्ट। ही इज थैंकिंग गॉड दैट ही इज एन एथिस्ट। तो इस प्रकार से ये इंसान जो इस परमात्मा ईश्वर निराकार के अस्तित्व में यकीन रखते हैं, मुबारक है, लेकिन इसको जानना भी है, तभी ये मुकम्मल होगा कार्य, तभी माना जाएगा कि मंजिले मकसूद को प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से ये संदेश आज, कल, परसों, तीनों दिन यहाँ पर इस समागम के अवसर पर ही नहीं, लगातार रोज जहाँ जहाँ पर भी भक्तजन विचरण करते हैं, वहाँ वहाँ ही ये संदेश ये दिए चले जा रहे हैं कि हे इंसानों, तुम भी इस परमात्मा ईश्वर को अंग संग जान लो, और इसको जानकर फिर आत्मा को सुरखरू कर लो आवागमन के बंधन से, और एक मोक्ष और मुक्ति और सैलवेशन की पात्र जो ये आत्मा बन जाए, इस मंजिल को पा ले। इस प्रकार से अपना जन्मों जन्मों का बोझ उतार पाए। यही एक अवसर, ये मौका है, इसको हाथों से जाने नहीं देना है। और तमाम संतों महापुरुषों की वाणी भरी पड़ी है, जो भी वाणी उन्होंने जिसका उच्चारण किया, धर्म ग्रंथों के रूप बने, उस सब में यही कहा है कि जाना रे जाना देवा जाना, जाना रे करा कल्याण से सांगति वेद पुराण, कि जानो जानो ऐसे परमात्मा को, जो कि सबका मालिक है। और से सांगति के वेद पुराण शास्त्र चार पुकारे ना तो माने, खट भी बेका बात बखाने, कि चार वेदों ने भी कहा, पुराणों ने भी कहा, कुरान भी कहा, बाइबल ने कहा, रामायण रामचरित मानस ने कहा, महाभारत का वो गीता वाला अंश उसमें भी कहा, चारों तरफ अभंग बोले जा रहे हैं, तमाम संतों की वाणी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सुना गाया जा रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वो तो कह रहे हैं लेकिन वो काम भी करना है, वो कर्म भी हमने करना है। और इस तरह से जिन्होंने ये कर्म कर लिया वो वास्तविकता में मंजिले मकसूद को पा लेते हैं। फिर उसका नतीजा क्या कि केवल आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, अब उसका दूसरा नतीजा ये निकला कि मन के भ्रम भी मिट गए, तेरे मेरे का भाव मिट गया, ऊंच नीच की दीवारें गिर गईं। क्योंकि मन की ये मान्यताएं थीं जिसके कारण एक ऐसे दीवारें मन में खड़ी हुई थीं जिसके कारण एक दूसरे को दुत्कारते चले गए, एक दूसरे को बेगाना देखते चले गए, एक दूसरे पे जुल्म व सितम करते चले गए। यही हमारे जीवन की चाल बनी रही और आज भी ऐसी चाल चलने वाले नज़र आ जाते हैं इस संसार में। मुंबई में भी नज़र आ जाएंगे, महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न गांव कस्बों खेड़ों में नज़र आ जाएंगे, हर प्रांत में नज़र आ जाएंगे, हर मुल्क में नज़र आ जाएंगे, ऐसे नज़र आ जाएंगे जिनकी मन में दीवारें खड़ी हुई हैं, जो अभी भी भ्रम और भ्रांतियों में जी रहे हैं, जो एकाकार नहीं हो रहे हैं, जो इस एक को नहीं जानते, इसलिए द्वैत का भाव द्वैष का भाव ये मनों में बना हुआ है और नुकसान उसी के कारण हो रहे हैं। और किस कारण हो रहे हैं? इसी कारण हो रहे हैं क्योंकि वो बोध नहीं जुड़ा हुआ है, वो एक अवेयरनेस नहीं आई है, वो रियलाइजेशन नहीं है। इसलिए ये हालात जो इंसानों ने ही बनाए हैं, किसी जानवर पशु ने नहीं बनाए हैं, आज के हालातों का कौन जिम्मेदार है? क्या आप कहेंगे कि सांप, क्योंकि सांप बड़ा जहरीला होता है, सांप जिम्मेदार है? कहां पर है वो? जितना नुकसान इंसान के हाथों इंसान का होता है, इस दुनिया के वातावरण को विशाला बनाने के लिए इंसान ही तो जिम्मेदार है। सांपों को कैद कर लिया सपेरे ने ये कहते हुए कि इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है, कि एक सपेरा सांप को अपनी टोकरी में बंद कर रहा है, कहता है यहां तो पहले ही बथेरे हैं डसने वाले, जहर से भरे हुए यहां चप्पे चप्पे में मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे। जब कोई मॉब का रूप धारण करता है उस वक्त समझें आप, जब वो मार काट अग्नि आग जलाना ये वो हो रहा होता है, तो कभी आपने इतने इकट्ठे सांप देखे हैं कभी दुनिया में? जब इस तरह से क्रूरता का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, एक पूरी तरह से जहरीलापन होता है, जबकि मासूमों की जानें ली जा रही होती हैं, कहीं पर जिक्र आते चले जा रहे हैं, वो दृश्य सामने आते चले जा रहे हैं, जो जो भी घटना चक्र चल रहा है, कि छोटे छोटे बच्चों का, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का, माताओं बहनों का कोई भी लिहाज नहीं और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इसलिए जिम्मेदार ये इंसान ही है जो दावे तो करता है कि बड़ी प्रगति कर चुका हूँ, बड़े मैदान मार चुका हूँ, लेकिन अभी ये कितना पिछड़ा हुआ है, कितना इसका म्यार नीचा है, जानवरों से भी बदतर है, पशुओं से भी बदतर है। इसलिए इस म्यार को ऊंचा उठाना है, वो लेवल अपना ऊंचा करना है। एक बंदे के रूप में पैदा हुए हमने, इंसान बन के जीवन के सफर को तय करना है, इस धरती को गुलजार बनाना है। ये एक संदेश और पैगाम ये महापुरुष संत जन ये देते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते पे इंसान चल रहा है ये विनाश का रास्ता है। लाइक ए सेइंग दैट द मॉडर्न चॉइस इज बिटवीन नॉन वायलेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, द चॉइस इज योर्स। इफ यू गोना चूज वायलेंस देन वी ऑल विल बी नॉट एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस ह्यूमन काइंड इफ वी डू नॉट अडेप्ट द पैथ ऑफ नॉन वायलेंस। अगर इस नॉन वायलेंस को नहीं अपनाया जाता है तो इसका मतलब ये मानुष जाति इस धरती पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो इतने सामान हथियारों के इकट्ठे हो चुके हैं, इससे ये धरती पे इसका अस्तित्व मिट सकता है। तो इसलिए ऐसी विवेक बुद्धि, ऐसी एक एहसास हर किसी को प्राप्त हो, यही एक शुभकामना, यही एक अरदास, यही एक प्रार्थना ये की जा रही है कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को ही ऐसी शक्ति और समझ प्रदान करे, ताकि सभी इस बात को समझ सकें और अपने जीवन की चाल को संभाल पाएं। ये जो भटकी बहकी हुई चाल है, इस चाल को संभाल पाएं। और ये भक्त जन ही अपने वचनों द्वारा ही नहीं, ये अपने जीवन के द्वारा प्रमाणित करते हैं कि वाकई ही प्यार से रहा जा सकता है, एक दूसरे के हितैषी बन के जिया जा सकता है। ये भक्ते बैठते नहीं हैं, इनके कदम लड़खड़ाते नहीं हैं मानवता से बहकते नहीं, मानवता से इनके कदम लड़खड़ाते नहीं, मजबूती से ये कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये भी नाम का नशा करते हैं, नशा ये भी करते हैं लेकिन नाम का। लेकिन जैसे किसी ने कहा है कि हे मुर्शद, तू जितना जितना पिलाता चला गया, उतने उतने हम संभलते चले गए। कि यहां पर वो पीना होता है जिससे और संभल जाते हैं, और दुनिया में जो नशे वो हमें कहां से कहां फेंक देते हैं। नशा दौलत का बद अतवार के एक नशा जो है कि सर पे शैतान के एक और भी शैतान चढ़ा। किसी को दौलत का नशा है, किसी को ताकत का नशा है, किसी को किसी और चीज़ का नशा है। नशे में चूर किसी को कुछ नहीं समझते, और जो नशे में है उसके कदम कभी भी संभले हुए नहीं होंगे। चल जाता है, जाना है नॉर्थ की तरफ, और कदम उसको ले जा रहे होते हैं साउथ की तरफ। इस तरह से वो नशे में चूर होता है। लेकिन ये नशा, ऐसा नशा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये ऐसी खुमारी है कि जो चाल हमारी बहकाती नहीं है, हमारी बहकी हुई चाल नहीं होती है उससे, बल्कि ये ऐसी खुमारी है जो हमें संभाल देती है, हमारी चाल संभली संभली सी बन जाती है। ये वो ऐसा नशा है और इसी नशे में आप चूर हैं और इसी नशे को बरकरार रखना है, इसको उतरने नहीं देना है। दुनिया का नशा चढ़ाना नहीं है, दुनिया का रंग अपने ऊपर चढ़ाना नहीं है। हमने उस तरह से नहीं बनना है जैसे कि दुनिया संसार जैसे कि इस चाल को चल रहा है, हमने उस चाल का अनुकरण नहीं करना है। ये जो चंदन का लेप, जैसे वो महापुरुषों के वचन कि चंदन लेप उतारे तो ए गर्द प्रीत भस्म संग होए, कि एक गधे के ऊपर चंदन का लेप कर दें तो चंदन का लेप तो उसके ऊपर कर दिया, लेकिन वो क्या जाने उस चंदन की कदर। वो क्या करता है कि जमीन पे लेट जाता है, धूल मट्टी में लेट जाता है और अपने जिस्म को जमीन पे रगड़ रगड़ कर वो सारा लेप उतार फेंकता है। तो ऐसी प्रवृत्ति हरगिज हमारी ना हो कि कितना कीमती और शीतल चंदन का लेप, जैसे उसकी ठंडक, उसकी महक, उसकी कदर हमेशा बनी रहे। ये नहीं कि इस संसार रूपी इस धरती पे अपने इस जिस्म को रगड़ रगड़ कर उस लेप को उतार फेंके, यानी कि संसार का असर नहीं ग्रहण करना है। एक असर ग्रहण करना है तो संत वाली प्रवृत्ति का असर ग्रहण करना है, गुरमत वाले चाल चलनी है और इसी प्यार के मार्ग पर चलते चले जाना है। इंसानियत की डगर पर चलते चले जाना है। ऐसे एक विवेकी जन बनकर सही सही चुनकर और जो हानिकारक है उससे नाता तोड़कर उसको तज कर इस तरह से इस जीवन के सफर को तय करते चले जाएं। ऐसी एक विजडम, ऐसी विवेक बुद्धि ये हर किसी की बनी रहे, वरना तो वो भी एक विजडम की मिसाल आती है कि एक बंदर पानी में से मछली निकाल रहा है, एक एक करके निकालता जा रहा है। तो पूछने वालों ने पूछा कि मछली को क्यों पानी से निकाल रहा है, तो कहता है मैंने सुना हुआ है कि डूबने से मर जाती हैं, ये मछलियां कहीं डूब के मर ना जाए इसलिए निकाल रहा हूं। तो ये उस बंदर की विजडम है। हालांकि उसके भाव तो सही हैं कि डूबने से बचाना चाहिए, लेकिन ये विवेक भी तो होना चाहिए कि मछलियों के लिए तो वही जल उनका प्राण है, वो प्राण है उसके। तो इस तरह से एक ऐसी विवेक बुद्धि जो हमें इस कदर सजग रखे कि हम हर वो कदम ऐसा उठा पाएं जो प्रमाणित करे हमारी समझदारी, ना के नादानी। कभी भी हम किसी खुद गर्जियों में लिप्त ना हो, जैसे संसार लिप्त होता है, वो दाएं से आए बाएं से आए किसी तरफ की बात करें, जो उनके मन की अपनी लालसा होती है वो जाकर वहीं पर सुई उसकी टिक जाती है, उससे आगे नहीं निकलती है। अभी तो थंब ड्राइव्स और सीडीज और क्या क्या चल पड़ा है, और कभी वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हुआ करते थे और उसके ऊपर वो जो नीडल वो सुई रखी जाती थी उससे फिर आवाज़ आती थी, और अक्सर स्क्रैच होता था तो एक ही जगह पर रिकॉर्ड अड़ जाता था और वहीं वो कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आती रहती थी। तो इस तरह से कहीं से भी कहें तो वो गर्ज वाला उसके अपने ही मायने निकालता है, वो उसका अपना ही एक उसको मीनिंग दे देता है। वो भी दास ने चंद दफ़ा वो बात रखी कि एक बच्चा गार वो जो उसके जो स्कूल की पोएम या छोटी सी वो बोल रहा है कि मछली जल की रानी है, तो अगली पंक्ति तो यही है कि जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो उसके पास बैठा हुआ पिता बेटे के और बेटा कह रहा है कि मछली जल की रानी है, तो आगे से पिता एकदम से कहता है कि रात को रोटी के साथ खानी है, कि वो तो मछली को बस यही कीमत दे रहा है। तो इस तरह से जो गर्ज वाले होते हैं वो किसी चीज़ का जिक्र कर लें, वो लाकर वहीं पर खड़ा कर देंगे जिसमें उनकी गर्ज की पूर्ति होती हो, जिसमें उनके अभिमान की पूर्ति होती हो, जिसको हम कहते हैं फीडिंग द ईगो, वो हर चीज़ को वहाँ पर ला खड़ा करेंगे। और सच्चाई जो हकीकत जो है इसको हमेशा नज़रअंदाज करेंगे। तो विवेक बुद्धि हो हर किसी की, ताकि ठीक ठीक ही चुना जाए, ठीक ठीक ही कहा जाए, ठीक ठीक ही सुना जाए, यानी कि विवेक के साथ। इस कदर हमारी वाणी भी हो, हमारे बोल भी हों, हमारे सुंदर व्यवहार भी हों, इस कदर हमारा सुंदर जीवन ये चारों तरफ अपना असर छोड़ता चला जाए। क्योंकि असर तो दोनों प्रकार के होते हैं, बुराई भी असर छोड़ती है, अच्छाई भी असर छोड़ती है, लेकिन ज़रूरत है एक ऐसा असर छोड़ना जो अच्छाई के रूप में है, जो भलाई के रूप में है, वो असर छोड़ने हैं, वो सुगंधी बिखेरनी है, दुर्गंध नहीं। एक गंदगी के साथ जुड़ी हुई दुर्गंध एक स्वच्छता की, क्लीनलीनेस की, हिंदुस्तान में तो जोर शोर से आजकल आप जानते हैं कि स्वच्छता के अभियान चल रहे हैं, और मिशन भी पिछले 10-12 साल से पहले ही इस अभियान को अपनाए हुए हैं। जगह जगह पर सफाई के अभियान चलाए जाते हैं, कहीं पर 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में भी जगह जगह पर इसी तरह के सफाई के अभियान चलाए जाते हैं, फरवरी में चलाए जाते हैं। नॉट जस्ट इन इंडिया, इन अदर कंट्रीज टू। इस तरह से ये स्वच्छता सफाई जहाँ पर वातावरण में, हमारे चौगिर्द में, जहाँ पर हम रहते हैं, जिन सड़कों पर चलते हैं, वाकई इसकी बहुत ज़रूरत है कि साफ़ सफाई हम रखें। कितनी बीमारियां पैदा होती हैं, कितने रोग जन्म लेते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि इतनी कीमती दवाइयां, कितने कीमती इलाज, तो कहां से हम कर पाएं। दूसरी तरफ इतनी गंदगी जो बीमारियों को जन्म देती है, कम से कम अगर महंगी कीमती दवाइयां नहीं हम खरीद सकते तो हम उन रोगों से तो बचाव कर सकते हैं, अगर उस गंदगी को ना हम स्थापित होने दें। तो इसी तरह से हमारी सोच वाली गंदगी, आवर पोल्यूटेड माइंड्स, आवर विशियस थॉट्स, तो ये एक गंदगी, ये एक ऐसा एक विपरीत जो हमारा रूप है, ये कभी ना बनने पाए। हम हमेशा ही अपनी सीरत को सुंदर बनाए रखें। सूरत तो फिर भी एक आज सुंदर है, कल को इसी चेहरे पे झुरियाँ पड़ जाएंगी, कहीं पर शक्ल के ऊपर कहीं कुछ और भी रूप बन सकता है, कहीं एलर्जी हो जाती है तो उसी एलर्जी के कारण हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। तो सूरत तो हमेशा उस प्रकार से सुंदर नहीं रह सकती। वो अगर हम ज़्यादा गौर करें अपनी सीरत को सुंदर बनाए रखने के लिए, कि ये सीरत हमारी सुंदर बनी रहे, यानी कि हमारे थॉट्स, हमारी डीड्स, हमारी फीलिंग्स ये सुंदर बनी रहे, ये फिर जवानी से बुढ़ापे में भी अगर प्रवेश कर जाएंगे, चेहरे की तो खूबसूरती चली गई लेकिन सीरत की खूबसूरती बनी हुई है, और ये खूबसूरती आखिरी सांसों तक ये कायम और बरकरार रहे। यही एक शुभकामना, यही अरदास, यही प्रार्थना है। तो अवसाद संगत, इसी मालिक खालिक, इसी निराकार दातार के साथ नाता जोड़कर इसको हृदय में बसाकर इस प्रकार से अपने इस जीवन को सुंदर से सुंदर बनाते चले जाएं। जैसे आप लगातार बोलते हैं कि उठता बसता प्रभु चे ध्यान, कि उठते बैठते इस मालिक प्रभु परमात्मा का ध्यान बना रहे, इसका हमेशा एहसास बना रहे। अपला तो एक देव करुणी ध्यावा, कि इस देव परमात्मा ईश्वर निराकार को हम ध्याते चले जाएं, इसकी उपासना बंदगी करते चले जाएं। और उपासना और बंदगी जहां सुमिरन के द्वारा है, वहां पर अति ज़रूरत इसकी उपासना बंदगी इस रूप से करनी है कि इसके बंदों से प्यार करके। ये असली बंदगी इबादत होगी, ये असली एक हमारी वर्शिप का म्यार ऊंचा होगा। दिस विल बी द ट्रू वर्शिप इफ यू लव mankind, नॉट जस्ट rituals एंड rites एंड reciting the name of God, repeating in day in and day out, or pilgrimages, the true form of worship, if we start loving this mankind, this humankind, तो इस तरह से ऐसी इबादत, ऐसी बंदगी सभी करते चले जाएं, आखिरी दम तक, आखिरी श्वासों तक करते चले जाएं। यही एक शुभकामना, इसी प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। आज महाराष्ट्र समागम का ये आखिरी दिन, जो विधिवत 3 तारीख के जो अनाउंस हुई थी उसके अनुसार अभी ये 3 दिन का समागम इस रूप में संपन्न हो रहा है। बाकी तो कल भी जो प्रोग्राम है उससे अनाउंसमेंट की गई है, और ये भी आप जानते हैं कि कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, टुमारो वी आर सेलिब्रेटिंग व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। ऑल्दो वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट इट वाज इन 1950 दैट वी बिकेम अ रिपब्लिक। तो कल रिपब्लिक डे है, और ये देश प्रेमियों के लिए जहाँ पर फख्र की बात होती है, वहाँ पर ये भी एहसास करना ज़रूरी है कि जहाँ पर अपने मुल्क के ऊपर इसकी आज़ादी को प्राप्त करने के कारण इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी कुर्बानियाँ और बलिदानों के बाद हमें आज़ादी भी मिली, लेकिन उसके बाद जो अगला कदम जो और कहीं अधिक इम्पोर्टेंस रखता है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, हमने इस देश को अखंड रखना है, हमने देश को मजबूत रखना है, हमने देश को कमज़ोर नहीं करना दंगे फसाद करके, हमने कमज़ोर नहीं करना शोषण करके, एक्सप्लॉयट करके, मिलजुल कर चलना है, सब ने एक दूसरे की कदर करनी है, और मिलजुल कर हमने देश को और आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से आप भक्त एक जहां सही मायनों में प्रभु की इबादत बंदगी कर रहे हैं, वहां पर देश के लिए भी आप हमेशा उसी वफादारी का प्रमाण हमेशा देते हैं। कल भी आप जानते हैं सेवा दल की रैली जब हुई तो हमेशा सेवा दल के जवान यही गाते हैं कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। और साथ ही वो गाते हैं कि वक्त पड़े तो देश की खातर देश के पहरेदार भी हैं, कि एक देश के लिए भी एक देश प्रेम की भावना भी ये आपके हृदय में बसती है। इसलिए आप लगातार हमेशा देश के हित के लिए ही कार्य करते हैं, सारी मानवता के हित के लिए कार्य करते हैं। इस तरह से एक ऐसा बैलेंस जीवन का बनाकर आप जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक संसार के लिए मिसाल बने हैं, और ऐसी मिसालें और बनती चली जाएं, तो दास इसी शुभकामना के साथ शब्दों को विराम देगा और खुशी जाहिर करेगा जो महाराष्ट्र के इस 48वें संत समागम पर आप सभी का उत्साह देखकर जो खुशी हासिल हुई है, जहां पर आपने ये समा कितने सुंदर ढंग से बिताया है, कितनी सुगंधी प्यार भरा वातावरण, ऐसा ही वातावरण ये स्थान स्थान पर स्थापित होता चला जाए, जो इस पंडाल में है, जो इन मैदानों में है, घरों में भी प्यार वाला वातावरण, गली मोहल्लों में भी प्यार वाला वातावरण, मुल्क में प्यार भरा वातावरण और विश्व में भी ये प्यार भरा ये वातावरण, ये हमेशा बनाने में योगदान आप सभी देते चले जाएं। इस मार्ग से कभी अपने कदम ना हटाएं, कभी भी मानवता इंसानियत का दामन कभी छोड़े नहीं। हर इंसान को भी यही एक अवस्था प्रदान करने के लिए अपने योगदान देते चले जाएं, इसी शुभकामना के साथ दास इजाजत चाहेगा। सात संगत जी धन।
इसी तरह से बैठे रहें, सिमरन होगा, ध्वनि होगी, फिर धीरे धीरे जो है अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे जी सदरू बाबा जी का प्यार भरा आशीर्वाद लेने के लिए अपने साथियों के साथ यहाँ आए हैं और हम भी उनका स्वागत करते हैं और यहाँ पर मिलजुल करके हम सभी अभी सिमरन में सुरेश पटेकर जी का साथ दें।
तन मन घोर घुमावा कहे अवतार तेरे ही दाता दुर्गति गोर कहे अवतार तेरे ही दाता निरंकार एक तू ही निरंकार
सदा भुलनहार
मैं सदा भुलनहार
दाता बख्शनहार
तू है दाता बख्शनहार
मेरे अवगुण नाची तार
मेरे अवगुण नाची तार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार
तेरा रूप है ये संसार
तेरा रूप है ये संसार
सबका भला करो करतार
सबका भला करो करतार
मेरी मंग है ये दातार
मेरी मंग है ये दातार एक तू ही निरंकार
मेरा डोले ना एतबार
मेरा डोले ना एतबार
बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार
बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार
करा मैं संता दा सत्कार
करा मैं संता दा सत्कार एक तू ही निरंकार
तू ही निरंकार तू ही ही तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार,
तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार,
तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार,
एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही
सदगुरु बाबा
हरदेव सिंह जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन।